ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहन जी कह रही थी आपको सौभाग्य मिला, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ये सौभाग्य मिला है आप सबके दर्शन करने का। तो दिल से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आप सबका आभारी हूँ कि आप सब ने मुझे अवसर दिया आप सबसे मिलने का। और विषय भी कितना खूबसूरत है, अभी आप सब बहुत प्यार से खिलखिलाकर हंस रहे थे, राइट? कौन कौन हंसा, कौन कौन हंसा? अच्छा, सभी हंसे। आप दोनों हाथ खोल के दिखा रहे हैं कि हम बहुत दिल से हंसे, राइट? कितना अच्छा हो यदि हमारी ये हंसी ताउम्र बनी रहे, जीवन हंसते खेलते बीते, खुशी खुशी बीते। जीवन में यदि उतार चढ़ाव आए भी, परिस्थितियां और बातें आए भी, तो भी हमारी खुशी को छीन कर ना जा पाए। यही वास्तव में आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप जीवन कैसे जीते हैं, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव और परिस्थितियां तो आएंगे ही आएंगे ना, या नहीं आएंगे? आएंगे। दो दोस्त सफर कर रहे थे, रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे। अचानक किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को थप्पड़ जड़ दिया। अब जब थप्पड़ मार दिया तो जिसे थप्पड़ पड़ा था उसने रेत पर लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार, मुझे दुख हुआ, तकलीफ हुई। लेकिन रेगिस्तान से कहीं बाहर जा नहीं सकते थे, यात्रा उनकी चलती रही। एक झील दिखाई दिया उनको, बड़े दिनों बाद झील दिखा था। दोनों बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़े, जिसे थप्पड़ पड़ा था वो पहले कूद पड़ा, लेकिन साथ ही उस पानी के दलदल भी था। तैरते तैरते जब वो उस ओर पहुंचा तो दलदल में धंसने लगा। दूसरा दोस्त तेजी से तैरता हुआ गया, उसने बड़ी मशक्कत करके अपने उस दोस्त को बचाया जिसे उसने थप्पड़ मारा था। बाहर निकलने के बाद उसने उस झील के पास ही बड़ा सा पत्थर था उस पे लिखा, आज मेरे मित्र ने, मेरे दोस्त ने मेरे प्राणों की रक्षा की, मुझे खुशी दी। दोस्त ने पूछा कि जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तब तो तुमने रेत पे लिखा था, आज जब मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की तुमने पत्थर पे क्यों लिखा? उसने एक बहुत प्रेरक सी बात कही मित्रों। उसने ये कहा कि जब कभी भी जीवन में दुखदाई बात हो, जो हमें अच्छी ना लगे, उसे हमें रेत पर लिखना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ वो मिट जाएगा। धूल आएगी, आंधी आएगी, हाँ वो मिट जाएगा, लेकिन अच्छी बातों को, खुशी से भरी हुई बातों को हमें हमेशा पत्थर पर स्थायी रूप से लिख करके रखना चाहिए, ताकि जब भी देखें हमें वो खुशी के पल पुनः उस खुशी के पलों की ओर ले जाएं। होता क्या है, अब जीवन में देखें, यहां इस परिसर में आप आए हैं, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर सी सुंदर बातें आप लोगों को मिल रही हैं, इन्हें आप अपनी डायरी में भी नोट करके रखें और जेहन में भी नोट करके रखें, क्योंकि ये खूबसूरत बातें केवल सुनने तक सीमित ना रहें। यदि हमें अपने जीवन को खुशनुमा बनाना है, हल्का बनाना है, आनंदमय बनाना है, उतार लें, उतार लें इसे जीवन। उच्चारण आसान होता है लेकिन आचरण कठिन होता है। यदि आचरण में अच्छी बातें आ जाएं, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। होता क्या है लाइफ में, हम बुरी बातों को ज्यादा पकड़ कर रखते हैं। जीवन में अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, अच्छी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम देखें कि हम अच्छी घटनाओं को, अच्छी बातों को कितना याद करते हैं, उनसे कितना प्रेरित होते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बुरी बातों को कितना याद करते हैं। क्योंकि जिस बात को हम याद करते हैं उसी घटना को फिर से हम जीवंत कर लेते हैं। इसीलिए एक सुंदर सी सीख
बुरी चीज से सीख लेकर आगे बढ़ना है ताकि वो बुराई फिर से ना हो, वो घटना फिर से ना हो। यद्यपि कई चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन कम से कम सोचना वो तो मेरे हाथ में है, उसे स्मरण में लाना, स्मृति में लाना वो तो मेरे हाथ में है, वो ना लाके मैं अच्छी बातों को लाऊं। हो सकता है ऐसा? चले, यात्रा है हमारी, ये जीवन रूपी यात्रा है, खुशी की यात्रा है, हम खुशी की तलाश में निकले हैं। यद्यपि खुशी हमारा अपना स्वभाव है, हमारा जीवन है, आत्मा का नरिशमेंट है, और ये ईश्वर के द्वारा दिया हुआ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों हम खुश रहना चाहते हैं? आप में से कोई ऐसा है जो दुखी रहना चाहता है? कोई ऐसा है? हाथ उठाएं जरा, दर्शन कर लें हम उनका। नहीं, अच्छा अच्छा, कौन कौन है जो खुश रहना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं? आप सभी हैं? हम सभी खुश इसलिए रहना चाहते हैं, विचार किया है आपने कभी? क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, ये हमारी नेचर है। पानी को आप कितना भी गर्म कर दो, लेकिन फाइनली वो ठंडा ही होगा, क्योंकि वो उसकी नेचर है, उसका स्वभाव है। हम भी खुश इसलिए रहना चाहते हैं, खुशी की तलाश इसलिए है हम सबको, क्योंकि वो हमारी नेचर है, वो आत्मा का भोजन है। यदि शरीर को पानी ना मिले, भोजन ना मिले, हम कैसे छटपटाने लगते हैं? आत्मा को भी जब खुशी नहीं मिलती तो भी उसको बेचैनी होने लगती है, इसीलिए हम उसकी तलाश करते हैं। इसलिए कहा, पहली बात, एक तो पास्ट की जो बातें हैं उसे ढो करके ना चलते रहें। जो भी पास्ट की बुरी घटनाएं हैं उसे यहां छोड़ के जाइएगा। जा सकते हैं यहां छोड़ के? दे के जाइए, ईश्वर का घर है, अर्पित करके जाइएगा। सारी बुराइयां, सारे बोझ, जो दुखदायी घटनाएं थी, मैं ईश्वर की को अर्पित करके जाऊं। बाबा का सुंदर कमरा बना हुआ है यहां पर, आप लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम पत्र लिखकर उसे अर्पित कीजिएगा, और अच्छी बातों को, अच्छी घटनाओं को लेकर के जाइएगा जो बीते हुए हैं, और साथ ही यहां की भी सुखद स्मृतियों को, और जीवन कैसे आगे भी सुखद रहे उसके लिए जो सूत्र हैं जिसपे हम लोग आज चर्चा करेंगे, उन्हें भी लेकर के जाइएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर के लिए आप सब अपनी आंख बंद करें और चलिए अपने पास्ट में, बाल्यकाल से लेकर के जहां आपने जन्म लिया, आप पले बढ़े, स्कूल में गए, मित्र संबंधी दोस्त यार, जीवन की वो घटनाएं सब आपकी आंखों के सामने। आप उस लम्हे में जाएं जिस लम्हे ने, जिस पल ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी थी, सबसे ज्यादा खुशी। कौन सा वो पल था जब मैं सबसे ज्यादा खुश था? एक, दो या तीन लम्हे हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे खूबसूरत लम्हे को आप याद करें, उसे जिए। कैसा था वो पल? कौन सी घटना थी, कौन सी बात थी, कौन सा अचीवमेंट था? आंखें खोलें अपनी, सभी पहुंचे अपने उस लम्हे तक। सबके चेहरे में वैसे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई है जो मुझे यहां से दिखाई दे रही है। मुस्कान आ गई ना सबके चेहरे पर, खुशी आई ना उस लम्हे को जी करके। उन लम्हों को अपने पास नोट करके रखा करें, और उन्हीं लम्हों को याद करके यदि पास्ट में जाना है तो खुशी बटोरें, क्योंकि खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप हर समस्या का सहज निदान कर सकते हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शांत रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं, अपने संबंधों को बेहतरीन बना सकते हैं। और यदि आप खुश नहीं हैं तो आपके जो संबंधी हैं, जो आपके पास आते हैं, वो भी आपसे दूर दूर भागने लगेंगे कि जब भी इनके पास जाते हैं ये तो अपनी समस्या का ही रोना गाना शुरू कर देते हैं। राइट? हमारे दार जी के पास सभी जाना चाहते होंगे कि जब भी इनके पास जाते हैं, वाह, ये तो खूब तालियां बजवाते हैं, खूब हंसी हमें देते हैं। राइट? आप सब भी सेशन के बाद संभवतः मिलना चाहेंगे, जाना चाहेंगे। वो व्यक्ति जो खुशी बांट रहा है उसके पास हर एक व्यक्ति जाना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि खुशी हमारी खुराक, खुशी हमारी अपनी नेचर। और चारों तरफ जब हम देखते हैं और अशांति के माहौल या दुखनुमा माहौल को देखते हैं, लोगों के ऐसे स्वरूप को देखते हैं, हमें लगता है कि नहीं, हम इनसे दूर रहें। लेकिन खुश यदि आप हैं, आप पाएंगे आपके संबंध सुंदर, आपका स्वास्थ्य सुंदर, आप जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी भी खेल से जुड़े हुए हैं, प्लेयर्स यहां आए हुए हैं, कोचेज हैं, साथ ही साथ अलग अलग आप अन्य फील्ड के भी हो सकते हैं, मेहमान आए हैं, जहां पे भी आप हैं, यदि आपका मन प्रसन्न है, आप शांत रहेंगे, हल्के रहेंगे, आपकी परफॉर्मेंस कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और वहीं यदि आप इरिटेटेड हैं, वहीं आप दुखी हैं, वहीं आप किसी भाव को लेकर के जो पास्ट में बिता हुआ है उसे लेकर चल रहे हैं, आप देखें आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन हो जाती है। इसीलिए खुश रहना है और खुशी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन यह भी फैक्ट है कि जीवन समस्याओं का एक दूसरा नाम भी है। जीवन में है तो परिस्थितियां और बातें भी हैं। एक युवक एक संत के पास पहुंचा और उसने कहा कि महाराज, मुझे एक ऐसी जगह दिखाइए जहां कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो, कोई तकलीफ ना हो। संत जी बोले, चल मेरे पीछे पीछे, और उसे लेकर के शमशान घाट पहुंच गया। बोले, यहां तो लेट जा। बोले, यहां क्यों लेट जाऊं, यहां तो मैं मरने के बाद आऊंगा। बोले, यही वो जगह है जहां जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, जहां कोई बात नहीं आएगी। यदि तुम नाव लेकर सागर में उतरे हो तो लहरें ना आए, क्या यह संभव है? एक कुशल नाविक जो होता है, एक कुशल पायलट जो होता है, एक कुशल ड्राइवर जो होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वाहन को, अपने एरोप्लेन को, अपने जहाज को सकुशल बाहर निकालता है, इंजॉय करता है। लेकिन उसे आना चाहिए कि कैसे उन परिस्थितियों का सामना करें। सिचुएशन आपके सामने रख रहा, व्हाट इफ समवन पास्ड अ नेगेटिव कमेंट ऑन योर फिजिकल अपीयरेंस। यदि आपके शरीर को लेकर के कोई बार बार कोई कमेंट पास करता है कि तुम तो बहुत मोटे हो, या तो तुम तो बहुत मोटी हो, तुम तो गंजे होते जा रहे हो, तुम्हारा पेट बाहर आता चला जा रहा है, हाँ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, बार बार यदि कोई आपको ऐसा कहता है, अब हम खुशी की बात कर रहे हैं, आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, राइट? हमें खुश रहना है हमेशा, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल चीज है, मेरी संपत्ति है। लेकिन अब कोई अपने कॉमेंट के द्वारा, एक सिचुएशन आपके सामने आ रही है कि कोई ये कह रहा है बार बार कि तुम ऐसे हो, क्या होगा? क्या होगा? इरिटेट होंगे, हां जी, फ्रस्ट्रेट होंगे, गुस्सा बहुत तेज आएगा। कितना तेज आएगा कि आप उसका आप उसका दांत तोड़ दें ऐसे, ठीक है? इतना गुस्सा आएगा कि तू मुझे ऐसा, तू जानता नहीं कि मैं बॉक्सिंग चैंपियन हूं, ऐसा, राइट? हाँ, कमलेश में जी गला दबा देंगे। अच्छा, गला दबा देंगे, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, आप तो बॉक्सिंग से भी आगे निकल गए, ये तो दांत तोड़ने की बात कर रहे थे। हाँ जी, गला दबाने से एक मुकदमा और तैयार। ओम शांति कहेंगे, अभी तो आप दांत तोड़ने की बात कर रहे थे। अच्छा, वो पहले वाले, ये बढ़िया, एक बार जोरदार ताली इनके लिए। इन्होंने कहा वो पहले वाली बात थी जब मैं दांत तोड़ देता, अब मैं यहां आया हूं तब मैं ओम शांति। ये लेके जाइएगा, जो मैं लेके जाने की बात कह रहा था, आचरण की बात कह रहा था, वो ये बात है कि यदि ये जीवन में आ जाए, कोई बार बार मुझे इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है और मैं दांत तोड़ने या गला दबाने की स्थिति से बदल के अब मैं ओम शांति कर लेता हूं या मुस्कुरा देता हूं, वो स्थिति कितनी बेहतरीन हो सकती है। कहते हैं ना कि व्यक्ति को केवल दांत तोड़ के नहीं हराया जाता, पछाड़ के नहीं हराया जाता, लेकिन मुस्कुरा करके भी हराया जाता है, राइट? तो ये मुस्कान, ये खुशी एक हथियार के रूप में क्यों ना यूज किया जाए कि सामने वाला पूरा जोर लगा रहा है और हम मुस्कुरा कर निकल जाते हैं। वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करेगा, लेकिन पांचवी बार वो कहेगा कि ये तो चिकने घड़े हैं, इनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिचुएशन आप ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसा होता है तो ये वाली बात हम कर पाएंगे या नहीं। सेकेंड सिचुएशन, मैं केवल चंद सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं। व्हाट इफ यू फेल टू डू एन इजी टास्क 5 times? कुड बी अ रिपोर्ट दैट योर बॉस आस्क्ड यू टू प्रिपेयर एट ऑफिस, और कुड बी एन इजी टास्क एट होम, बहुत ही आसान सा काम, या तो आपके बॉस ने आपको करने को दिया, या फिर घर का ही कोई आसान सा काम है, या फिर आप प्लेयर हैं, कोई आसान सा निशाना लगाना हो, आप उसमें बार बार असफल हो रहे हैं, कुश्ती की बात है, आप बार बार पछाड़े जा रहे हैं, इजी सा इजी, पतला दुबला पहलवान, पतला दुबला व्यक्ति आपको हरा रहा है, पछाड़ रहा है, क्या होगा? आप बार बार असफल हो रहे हैं, क्या होगा? हाँ जी, अंदर झांकेंगे कि क्या हो रहा है, किस कारण ये हो रहा है, वेरी गुड। और सेल्फ डाउट पैदा होगा कि मैं, पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा मुझसे, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, वेरी गुड। और ओके, और अब ये बताएं, ऐसी स्थिति में आप खुश रहेंगे? हाँ जी, नॉट पॉसिबल। और ठीक है, मैं और कोशिश करूंगा, ओके, मैं कोशिश करूंगा, एक बार, दो बार, पांच बार मैं असफल हो गया, यहां क्या मैं अपनी खुशी, देखें अब अपने आप को, ये हम सबके साथ होता है, हम एक, दो, तीन, चार, पांच बार असफल होने के बाद हम अपने मन में क्या ले लेते हैं। मैं तो पांच बार की बात कह रहा हूं, एक बार या दो बार होने के बाद भी हम अपने अंदर क्या ले लेते हैं, क्या हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, या हम अपने खुद के ऊपर, जैसे हमारे भाई ने कहा, डाउट करने लगते हैं कि शायद मैं कर पाऊं ना कर पाऊं, होगा या नहीं होगा, और मेरे अंदर की जो खुशी है वो चली जाती है। असफल होते ही व्यक्ति, असफलता किसी को प्रिय नहीं है, सफलता खुशी देती है, असफलता दुख कष्ट, लेकिन वो दुख ना दे, वो हमें इरिटेट ना करे, वो हमें हीन भावना की ओर ना ले जाए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन होता क्या है, जस्ट ये देखें। अच्छा, तीसरा एक सिचुएशन आपके सामने, व्हाट इफ समवन केम अप ऑन द स्टेज एंड इंसल्टेड यू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फॉर नो मिस्टेक ऑफ योर्स। मैं मंच पे हूं, अपने मित्रों के बीच हूं, हजारों लोगों के बीच हूं, कोई आता है मुझे अपमानित करता है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो, मैं जानता हूं तुम यहां बड़े बन रहे हो, बड़ा बड़ा भाषण कर रहे हो, या ये दिखा रहे हो, वो दिखा रहे हो, ऐसी बात कर रहे हो, वैसी बात कर रहे हो, बट आई नो हु यू आर। और वो इंसल्ट करता है, मुझे अपशब्द कहता है, मैं खुश रह पाऊंगा? खुश रह पाऊंगा? विचार करें। ये कुछ सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी। अब हम हैप्पी लिविंग की बात कर रहे हैं, आपकी अपनी शक्ति, आपकी अपनी चीज, आपके घर में आपने कमाया हुआ 1,00,000 रुपए, आपने बड़ी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ है, वो आपकी अपनी संपत्ति है, उसे कोई भी छीन कर ले जाए, ऐसा आप होने देंगे? वो आपकी है, खुशी आपकी है, हैप्पीनेस आपकी है, इसे ये बातें छीन कर ले जा रही हैं, आप देखें। अब ये बताएं कि ऐसी जो सिचुएशंस आती हैं, इन सिचुएशन में खुश रहना या दुखी होना, क्या ये मेरे हाथ में है या नहीं है? कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, वो जरा हाथ उठाएं। नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लोग आ रहे हैं, सिचुएशन और बातें आ रही हैं, वो मेरी खुशी को छीन के ले जा रहे हैं, मेरे हाथ में नहीं है कि मैं खुश रहूं। वो तो बातें आ रही हैं ना, परिस्थिति आ रही है ना, उसके कारण मेरा मूड उस सिचुएशन के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार, बात के अनुसार चेंज हो रहा है। कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे हाथ में नहीं है? अच्छा, कितने ऐसे हैं जो कहते हैं खुश रहना मेरे अपने हाथ में है, ये मेरी अपनी चॉइस है? वो जरा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। आप में से ज्यादातर, और कुछ जिन्होंने नहीं उठाया वो शायद अभी कंफ्यूज हैं, बीच की स्थिति में हैं कि नहीं नहीं ये बात सुनने में ये वाली तो अच्छी लग रही है, लेकिन पॉसिबल तो बहुत ही है? नहीं है। चॉइस आपकी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये आपका अधिकार है। आप क्या चयन करते हैं थाली में, अभी आप डाइनिंग में जाएंगे सेशन के बाद, आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, आप क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, राइट? आपकी चॉइस है या नहीं है? थाली आपको परोस भी दी गई, उसमें से आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये आपकी चॉइस है या नहीं है? आप चुन सकते हैं या नहीं चुन सकते? चयन आपके हाथ में है। इस बात पर थोड़ा गहराई से विचार कीजिए, गहराई से विचार कीजिए। सामने से यदि गाड़ी आ रही है, तेज स्पीड से आ रही है, आप हाईवे पे चल रहे हैं, आपकी गाड़ी आपके अपने हाथ में है, आप उसे बचा सकते हैं यदि सामने वाला ठोकर मारने की कोशिश कर भी रहा है तो, और आप कोशिश करते भी हैं। चयन आपके हाथ में है क्योंकि स्टीयरिंग आपके अपने हाथ में है। एक सत्य घटना मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं आपके साथ सत्य घटनाओं की चर्चा करूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, हिटलर जो यहूदियों के बहुत विरोधी थे, यहूदियों को कैद खाने में डाल दिया करते थे और फिर गैस चेंबर में डाल के मार दिया करते थे। विक्टर फ्रैंकलिन जो बहुत ही प्रसिद्ध मनोचिकित्सक थे, राइटर थे, उन्हें भी, उनके पिताजी को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को कैद कर लिया गया था। इनकी आंखों के सामने पिताजी को गैस चैंबर में डाल के मार दिया गया, पत्नी को गैस चैंबर में डाल के मार दिया गया, बट स्टिल उनके पास एक सुंदर विचार कि मुझे खुश रहना है, स्थिर रहना है और यहां से बच के निकलना है। खुश रहना है, अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर रखना है और यहां से बच करके निकलना है। सोचे कितनी बड़ी सिचुएशन है। अभी हमने जिन सिचुएशन को आपके सामने रखा वो बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन एक व्यक्ति जिसे पता है कि अब अगली मृत्यु उसकी हो सकती है और लगभग वो तय है, और वो अपने परिजनों को मरता हुआ देख रहा है, पिता, पत्नी, बच्चे, बट स्टिल उनके पास ये सुंदर शक्तिशाली विचार, मुझे खुश रहना है, अपनी मनोदशा को स्थिर रखना है और यहां से बच के निकलना है। अब इसका जो एक सुंदर चमत्कार है, प्रभाव है, अभी डॉक्टर प्रेम मसन जी ने संभवतः इस पर चर्चा की होगी और यहां लगातार इसकी चर्चा होती है, मैजिक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। आपके विचारों में, आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम में इतना दम है कि आप कायनात में सारी चीजें जो हो रही हैं उन्हें अपने काबू में कर सकते हैं। अब जब इनकी बारी आई, विक्टर फ्रैंकलिन की बारी आई, बाहर आए, तब भी उनके अंदर ये विचार, उन्हें मारने के लिए निकाला जा रहा है। अब जरा उस सीन को, और ये बिल्कुल सत्य घटना है, उस सीन को जरा अपने सामने लाएं, उसे निकाला जा रहा है गैस चैंबर में डाल के मारने के लिए, बट उनके पास ये विचार, खुश रहना है, स्थिर रहना है, बच के निकलना है। और जैसे उन्हें निकाला गया, वहां के माहौल में थोड़ा अफरा तफरी हो गई, कुछ सैनिक आपस में लड़ने लगे, और इस बात का फायदा उठा करके विक्टर फ्रैंकलिन उस ट्रक में जाकर के चढ़ गए जिसमें लाशों को लादा जा रहा था, और लाशों के बीच लेट गए, किसी का ध्यान नहीं गया। अन्य लाशों को भी डाला गया और उस स्थान पर जाके फेंक दिया गया जहां पर फेंक दिया जाता था। विक्टर फ्रैंकलिन वहां से उठे, दूसरे देश चले गए, और वहां उन्होंने एक किताब की रचना की और पूरे विश्व को एक सिद्धांत दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस। ये आपके ऊपर है कि आप अपना जीवन कैसे बनाते हैं। आप यदि अपने जीवन का नियंत्रण, अपने मूड का नियंत्रण अपने जीवन के ध्येय का नियंत्रण, कि वो मेरे जीवन का ध्येय निर्धारित करे, मैं कहां तक पहुंचूंगा कहां तक नहीं पहुंचूंगा, मैं सफल होऊंगा या विफल होऊंगा, मैं सुखी रहूंगा या दुखी रहूंगा, यदि ये नियंत्रण मैंने औरों के हाथ में दे दिया, ये चयन का अधिकार मैंने औरों को दे दिया, तो मैं स्लेव हो जाऊंगा, मैं गुलाम बन जाऊंगा। अपनी खुशी के लिए मुझे दूसरे की ओर देखना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के लिए मुझे दूसरे की ओर देखना पड़ेगा, अपनी सफलता के लिए मुझे दूसरे की ओर देखना पड़ेगा। इसीलिए चयन करें कि मुझे अच्छी बातों का चयन करना है, खुशी का चयन करना है, परिस्थितियों का नहीं। और इसीलिए मैं आपके लिए एबीसीडी लेकर के आया हूं। एबीसीडी बचपन में हम पढ़ चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए, हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड, और ये कहा जाता है कि आपका एटीट्यूड ही ये निर्धारित करता है कि आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। यदि आपने अपने नजरिए को, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल भी नकारात्मक कर दिया, उसे पॉजिटिव नहीं रखा, शक्तिशाली नहीं रखा, ऊंचाई तक पहुंचने की अपनी जो एक सशक्त दृढ़ इच्छा है उसे बनाए नहीं रखा, तो फिर आप पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है, इसको कंपेयर किया जाता है एक आइसबर्ग के साथ। आइसबर्ग आप जानते हैं, सागर में तैरने वाला बड़ा हिमखंड, और इसकी आकार जो होता है कई गुना, टाइटैनिक जो डूबा था जहाज, वो भी एक हिमखंड से टकरा करके ही डूबा था। बड़े बड़े पर्वतों के आकार के भी होते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता, इसका 90% जो पोर्शन होता है वो नीचे होता है और केवल 10% जो पोर्शन है वो बाहर होता है। अब एटीट्यूड जो है वो हमारा इंटरनल 90% वाला जो पोर्शन है वो है। हम वर्क किस पे करते हैं ज्यादातर? आप सब प्लेयर्स हैं, कोचेज यहां बैठे हुए हैं। हमारा वर्क, हमारा फोकस ज्यादातर होता है ज्ञान पे, नॉलेज पे। यदि हम इनको, जो भी चीजें आप देख रहे हैं, चाहे नॉलेज है, स्किल है, हार्ड वर्क है, यदि इन्हें हम एक नंबर असाइन करें, तो नॉलेज को यदि आप देखें नंबर वाइज एक एक लेटर के साथ, तो आप पाएंगे कि ये टोटल मिलाकर के 96 होता है। स्किल्स जिस पे हम इतना कार्य करते हैं, उन्हें डेवलप करने के लिए वर्क करते हैं, उसे यदि आप टोटल करें 82 होता है। हार्ड वर्क जो हमें करना है, हम करते भी हैं, उसे भी यदि आप असेंबल करें 98 होगा। लेकिन जिस पर हमारा ध्यान नहीं होता, जो हमारे जीवन की सफलता, हमारी खुशी का एक आधार है, हमारा एटीट्यूड, वो 100% मार्क हमें देता है। यदि आप उसके एक एक लेटर को काउंट करें, उसे असाइन करें एक एक नंबर के साथ, आपको 100 मिलता है। अब आप विचार करें, बाहरी तौर पर हम इतना वर्क करते हैं, कई बार हमें लगता है कि हम इतना परिश्रम करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है, राइट? हम ठीक वैसे ही हैं जैसे एक लकड़हारा लगातार कुल्हाड़ी से पेड़ों की कटाई करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, मेहनत कर रहा है, स्किलफुल है वो, बहुत अच्छा योग्य है वो, वर्षों से पेड़ों की कटाई कर रहा है, वो जानता भी है कि पेड़ कैसे काटना है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, हार्ड वर्क भी कर रहा है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगा रहा है। इसीलिए पेड़ों की जो संख्या है, जो वो 10 काटा करता था एक दिन में, शायद अब 2 रह जाए, 3 रह जाए, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड अर्थात अपने कुल्हाड़ी पर धार नहीं लगा रहा है। हम भी इस पर कितना वर्क करते हैं, अपनी साथ कितना बैठते हैं, क्योंकि जब भी एटीट्यूड की बात आती है तो 2 एटीट्यूड की बात आती है। या तो हम पॉजिटिव होंगे बातों को लेकर, व्यक्ति को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, या फिर हम नेगेटिव होंगे। हमारा एटीट्यूड कैसा है, इसके आधार पर मेरी खुशी, मेरी सफलता निर्धारित होती है। इसलिए यहां से ये चीज जरूर लेकर के जाएं। अब जिस सिचुएशन मैंने आपके सामने रखा था और आपने अलग अलग बातें रखी कि यदि कोई आपके फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के कुछ कहता है, हम गला दबाने तक की स्थिति तक पहुंच गए थे, दांत तोड़ने तक की स्थिति तक पहुंच गए थे, इरिटेट, फ्रस्ट्रेट होना, वो तो कॉमन सी बात थी। लेकिन आपके सामने निक है, विदाउट आर्म्स, विदाउट लेग्स। बचपन से जब इनके हाथ नहीं पैर नहीं, लोगों की बातें सुन सुन करके ये परेशान कि तुम तो बोझ हो, अपने माता पिता के ऊपर बोझ हो, समाज के ऊपर बोझ हो, लोगों के ऊपर बोझ हो, तुम क्या करोगे, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम डिपेंडेंट ही रहोगे पूरी लाइफ। बातें सुन सुन के फिजिकल अपीयरेंस पर, इनकी कोई गलती नहीं, जैसे कर्मों के हिसाब से व्यक्ति का जन्म होता है, इनका जन्म हुआ बिना भुजाओं के या बिना पैरों के। लेकिन लोगों की बातें सुन सुन के, अब पुनः जो बात मैं कह रहा था उस पर गहराई से विचार कीजिएगा, जब ये 19 साल के हुए, पूरे ही जीवन बचपन से लेकर के बड़े होने तक बातें सुनते सुनते इस स्थिति तक पहुंचे, चॉइस उनके पास दो थी, एक या तो मैं सुसाइड कर लो, गिव अप कर दूं, क्विट कर दूं, मर जाऊं, क्योंकि सचमुच मैं किसी काम का नहीं, और दूसरा ये कि मैं ये साबित करके दिखाऊं कि गॉड डजंट क्रिएट गार्बेज, ईश्वर कभी भी कचरा पैदा नहीं करते। यदि उन्होंने मुझे पैदा किया है, यदि उन्होंने मुझे इस संसार में भेजा है, तो जरूर एक ध्येय लेकर के भेजा है, एक लक्ष्य लेकर के भेजा है, मैं गार्बेज नहीं हूं, यह मुझे प्रूफ करके दिखाना है। कैसे? रास्ता ढूंढा, चयन किया, अपने जीवन का निर्धारण, मुझे लोग किस रूप में जाने इसका निर्धारण मुझे करना है, इसका निर्धारण किसी और को मत करने दीजिए कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। होता यही है कि हम दूसरों की नजर से खुद को देखना शुरू कर देते हैं कि लोग मेरे बारे में ये कहते हैं और उस आधार पे मैं खुश होता हूं। यदि मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने और मैं गली से गुजरा, पार्टी में गया, अपने दोस्तों के बीच गया और किसी ने मेरे अच्छे कपड़े की ओर ध्यान ही नहीं दिया, किसी ने उसकी प्रशंसा ही नहीं की कि वाह क्या कपड़े पहने तुमने, ये कपड़े तुमने कहां से लिए, ये ज्वेलरी तुम्हारी कितनी अच्छी है, कहां से तुमने ली, कैसे बनवाई, कितने की है, बहुत इसमें तुम अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो, उन्होंने कहा, और वैसे वैसे मेरी खुशी बढ़ती चली गई। और यदि किसी ने मुझे नोटिस ही नहीं किया, क्या होगा, नोटिस ही नहीं किया और मैं इतनी अच्छी, हाँ लगभग भाई साहब को 3 घंटे इंतजार करना पड़ा आपके तैयार होने तक, ऐसा ही होता है ना, भाई साहब इतने 3 घंटे वेट करके, पेशेंस रख के, और वहां पार्टी में गए, किसी ने तारीफ नहीं की, हाँ खुशी डाउन, राइट। विचार करना है, विचार करना है हम सबको, मेरी खुशी दूसरों के कहने के आधार पर। इसीलिए प्लास्टिक स्माइल हो गई है आज, है ना, प्लास्टिक, लोगों ने कहा स्माइल आई, जब भी कहा स्माइल आई, और नहीं कहा तो मेरी खुशी गायब। हम हमेशा ऐसा वाला जो एक सुंदर सा चेहरा है खुशनुमा, वही पसंद करते हैं ना, जो डाउन वाला चेहरा है वो पसंद नहीं करते। इसीलिए निक चयन किया इसने, चयन किया मुझे प्रूफ करके दिखाना है, और आज ये संसार के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, बहुत सारी इनकी किताबें हैं, डीवीडीज हैं, और पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए ये लोगों को मोटिवेट करते हैं। इनके लिए एक बार तालियां तो बनती है ना, जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में खुश कैसे रहना है। चयन अपने हाथ में रखो, अपना जीवन अपने हाथ में रखो, अपने सपनों को किसी के कारण बिखरने मत दो, और ना ही किसी के छोटे छोटे नेगेटिव कमेंट्स आपको डाउन करें। अच्छी बातें चढ़ा दें, जिसको कहते हैं फूल के कुप्पा हो गए, और यदि कुछ बुरा कह दिया, हमारी खुशी जाती बनी, ये ना हो। दूसरा सिचुएशन जो आपके सामने रखा गया था, 5 बार हम असफल हो जाते हैं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। थॉमस अल्वा एडिसन, आज जिस बल्ब के नीचे बैठकर, जिस प्रकाश के नीचे बैठकर के हम बातें कर रहे हैं, यदि इन्होंने भी असफलता से हार मान ली होती, लोगों की बात सुन करके, कि क्या है तुम एक ही चीज के पीछे पड़े हुए हो, कितनी बार तुम असफल हो गए, किसी और चीज में ट्राई करो ना। सैकड़ों बार कहा जाता है इन्होंने प्रयास किया, उसके बाद जाकर के बल्ब का सकुशलता पूर्वक निर्माण हो पाया। और जब किसी ने पूछा इतने बार असफल होने के बाद आप सफल हुए हैं, क्या कहेंगे, उन्होंने कहा मैंने इतनी सैकड़ों बार कैसे बल्ब नहीं बनता वो जान पाया मैं, वो ये जान पाया मैं कि सैकड़ों बार कैसे क्या करने से बल्ब नहीं बनता और क्या फाइनली करने के बाद बल्ब का निर्माण होता है। जब व्यक्ति को कुछ पाना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, तो कहा जाता है आप बहरे हो जाइए, बहरे हो जाइए, क्योंकि बहरे हैं तब आप उछल के पहुंच पाएंगे। और यदि लोगों की बात, क्योंकि व्यक्ति जो है ना अपनी बातों से काटता है, तो कहते ना एक हॉस्पिटल के बाहर बहुत सुंदर चार लाइनें लिखी हुई थी, इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उस पेशेंट को एक चूहे ने काटा था, एक दिन उसका इलाज हुआ और ठीक होकर के चला गया। दूसरी लाइन लिखी थी, इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक बिल्ली ने काटा था, तीन दिन उसका इलाज चला, ठीक होकर चला गया। तीसरी लाइन लिखी थी, इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, कुत्ते ने काटा था, 14 दिन इलाज हुआ, ठीक होकर चला गया। चौथी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, उसे एक आदमी ने काटा था, उसे एक आदमी ने काटा था और वो अभी तक अंदर है। अंदर है मतलब अभी तक वो ठीक नहीं हुआ है, वो ठीक होके नहीं जा पाया। तो व्यक्ति अपनी बातों से काटता, दांत से नहीं काटता, अपनी बातों से काटता है। क्या है, तुम थोड़ी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है। अरे बहुतों को देखा है, नहीं कर सकते, नहीं बन सकते, नहीं पहुंच सकते, तुम्हारी तो बिल्कुल बस की बात नहीं है, कहां लगे हुए हो तुम, कुछ और ट्राई करो। कई बार ऐसे लोग होते हैं, ऐसे नेगेटिव बाइट करने वाले लोगों से अपने आप को दूर भी रखें, या तो फिर अपने कान, ईश्वर ने 2 कान किस लिए दिए हैं, किस लिए दिए हैं, सुना और निकाल दिया, जो आपके काम की नहीं है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो ऐसी बातों से अपने आप को या तो दूर रखें, या सुना और निकाल दिया। यदि दिल पे रख लिया तो कहते हैं दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, तो दिल पे नहीं लेना है ऐसी बातों को, ये थोड़ा सा हम पक्का करके जरूर जाएं। तो एक थॉमस अल्वा एडिसन हमारे लिए एक प्रेरक, कई बार आप असफल हो सकते हैं लेकिन अपने प्रयास को हमें जारी रखना है, और जो सफलता मिलती है बार बार की असफलता के बाद भी वो स्थायी होती है, इसीलिए हारेंगे नहीं। और प्लेयर्स तो वैसे भी नहीं हारते ना, आपके अंदर तो जीत का जुनून रहता है, जज्बा रहता है, राइट, एम आई राइट, एम आई राइट। तो अपने लिए एक बार ताली तो जरूर बजा लें कि ऐसे प्लेयर्स, ऐसे कोचेस मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जो जीतते हैं, जीतने के लिए खेलते हैं, या फिर जीत का जज्बा नहीं छोड़ते। हार भले, कहते हैं ना व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक हार नहीं मान लेता, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। कहते हैं ना, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, तो हमें ठान कर आगे बढ़ना है। थर्ड सिचुएशन जिसके बारे में मैंने आपके सामने बात रखी थी कि क्या हो कि यदि लोग आपको अपमानित करें, मैंने कहा था आपको मैं लाइव एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप लोगों के सामने बातें रखूंगा, ताकि वो लोग जो ये करके गए हैं हम भी प्रेरणा लें। वो भी एक इंसान थे, हार मांस के मनुष्य थे। आपको यदि ऐसा लगता है कि नहीं कुछ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे, ऐसा नहीं। कहा जाता है व्यक्ति महान अपने कर्तव्यों से बनता है, जन्म से कोई महान नहीं बनता, मां के गर्भ से कोई पैदा होकर के तुरंत महान नहीं हो जाता, अपने कर्मों से, अपने परिश्रम से, अपनी जिजीविषा से, अपनी लगन से, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण से व्यक्ति महान बनता है। और साथ ही चीजों को वो किस प्रकार से देखता है, लेता है, उस आधार पे महान बनता है, या अपने जीवन को खुशहाल बना के औरों को प्रेरित करता है। हमने देखा कि हम परेशान होंगे यदि लोग मुझे अपमानित करते हैं तो, 10 लोगों के बीच, 50 लोगों के बीच। अब्राहम लिंकन जब वो राष्ट्रपति के लिए पद के लिए चुने गए और ओथ लेने के लिए वो जा रहे थे, ओथ लेने के लिए हजारों लोग सामने थे जो उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे। संभवतः उस समय यदि टेलीविजन का आविष्कार हुआ हो तो हो सकता है प्रसारण, रेडियो का प्रसारण तो हो ही रहा होगा। ऐसे में जब वो जा रहे थे ओथ लेने के लिए, एक सीनेटर खड़ा हुआ और उनसे कहा कि मिस्टर लिंकन, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारे परिवार वालों के लिए जूते बनाया करते थे, मिस्टर लिंकन के फादर मोची थे, जूते बनाते थे। लिंकन को अपमानित करने के लिए, राष्ट्रपति को अपमानित करने के लिए हजारों लोगों के सामने एक व्यक्ति खड़ा होता है और यह कहता है कि मिस्टर लिंकन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपके पिताजी हमारी फैमिली के लिए जूते बनाया करते थे। सी द सिचुएशन। अब ऐसे में व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन एटीट्यूड ना, आप चीजों से उठाते क्या हो वो बहुत मायने रखता है। आप चयन किस चीज का करते हो वो बहुत मायने रखता है। गुलाब का पौधा, उसकी जड़ में हम गोबर डालते हैं, कचरा डालते हैं, गुलाब का पौधा उसमें से खुशबू खींच लेता है। कैसी भी बुरी बात हो वहां से क्या अच्छा लिया जा सकता है, वो कला हमें हमेशा खुश रहने में मदद करती है। लिंकन जी ने बहुत प्यारा सा जवाब दिया। हो सकता है वो बहुत परेशान हो सकते थे, हो सकता है बहुत नाराज हो सकते थे, गुस्सा हो सकते थे, एक प्रेसिडेंट के सामने तुम ऐसी बात कर रहे हो आदि आदि इत्यादि, लेकिन उन्होंने कहा, ध्यान से सुने, उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे पिताजी जूते बनाया करते थे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे भी जूते बनाने के लिए आते हैं। यदि आपको कोई शिकायत है मेरे पिताजी के बनाए हुए जूतों से तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपके जूते दुरुस्त कर दूंगा। सी हमने क्या उठाया, हमने क्या लिया। बातें बिगड़ सकती थी लेकिन हमने अपने एटीट्यूड के बेस पर उसे चेंज कर दिया। इसीलिए कहा कि हम अपने एटीट्यूड को हर स्थिति में पॉजिटिव बनाकर रखें, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाते हैं। जब आप गाड़ी लेकर के निकलते हैं ना सड़क पर, तो बहुत सारे जो भौंकने वाले होते हैं ना, वो आपके पीछे पीछे भागने लगते हैं। देखा है ना आपने, उनको कोई काम नहीं होता। होता है क्या? उस डॉगी को आपके गाड़ी में नहीं बैठना होता है, लेकिन उसका काम है कि वो दौड़ेगा। दौड़ने वाले बहुत आएंगे, लेकिन मुझे अपनी खुशी, अपनी स्थिति, अपना लक्ष्य उनके आगे समर्पित नहीं कर देना है, उनके पीछे नहीं भागने लगना है, अन्यथा हम अपने लक्ष्य से वंचित हो जाएंगे। जब हाथी भी बाजार से गुजरता है ना, तो भी ये पीछे पीछे आने लगते हैं कि ये कौन आ गया बड़ा सा जानवर, लेकिन हाथी उनकी तरफ नहीं देखता, हाथी उनकी ओर नहीं देखता। यदि वो हाथी एक एक के पीछे भागने लगे कि तू मेरे पीछे कैसे आ रहा है, तू मेरे पीछे कैसे आ रहा है, तो वो हाथी हाथी नहीं रहेगा, वो हाथी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। आप सब कौन बैठे हुए हैं, कौन कौन यहां हाथी बैठे हुए हैं, महावीर, महाशक्तिशाली, वो जरा हाथ उठाएं, वो जरा हाथ उठाएं, ऐसी मेंटालिटी वाले, बहुत सुंदर। हाथी का मतलब वो हाथी नहीं, लेकिन उस मानसिकता वाले कि लोग मेरे पीछे किसी भी भाव से भागें, लेकिन मैं अपने ध्येय की ओर निरंतर बढ़ता रहूंगा। बी बैलेंस। अपनी लाइफ में बैलेंस नितांत आवश्यक है। आप द्विचक्र वाहिनी कह लें, दो चक्कों वाली जो गाड़ी होती है, यदि एक चक्का आपका अच्छा है, दूसरा चक्का ठीक नहीं है। मैंने द्विचक्र वाहिनी कहा तो मुझे याद आ गई एक बात, हंसी की बात। एक हिंदी के प्रोफेसर थे, उनकी गाड़ी में पंचर हो गया, तो वो एक पंचर बनाने वाले व्यक्ति के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, हे द्विचक्र वाहिनी के सुधारक, मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में एक लघु कांटा चुभन से एक सूक्ष्म छिद्र हो गया है, कृपया आप अपने हवा ठूसक यंत्र से मेरी द्विचक्र वाहिनी के अग्र चक्र में हवा समीर प्रवाहित करें। उसने ध्यान से देखा, बोला छुट्टे नहीं है, आगे जाओ। उसे लगा कोई भिखारी, नया ट्रेंड वाला, भीख मांगने का ये नया ट्रेंड होगा शायद, जो एक श्लोक बोल करके मुझसे भिक्षा की याचना कर रहा है। बोले सुबह सुबह कहां से आ गए, आगे जाओ। तो यदि आपका एक पहिया, उसमें यदि हवा नहीं है तो क्या होगा, आपकी गाड़ी ठीक से नहीं चल पाएगी। बैलेंस, जब कभी हम बैलेंस की बात करते हैं ना, तो बैलेंस के लिए कहा जाता है कि बैलेंस ही आपकी लाइफ में ब्लिस लाता है, आनंद लाता है, खुशी। यदि एक ही चीज हो, रोज आपको एक ही प्रकार की सब्जी खिलाई जाए, आप यहां तीन दिन चार दिन के लिए हैं, रोज आपको पालक की ही सब्जी बना के दे दी जाए, नाश्ते में भी पालक, भोजन में भी पालक, रात के भोजन में भी पालक, आप कहेंगे भाई यहां बस पालक ही मिलता है क्या माउंट आबू में, कोई दूसरी चीज नहीं है क्या? वैरायटी चाहिए, बैलेंस। जीवन में दोनों प्रकार की चीजें, हम भौतिक चीजों के पीछे तो बहुत जा रहे हैं, आप जानते हैं, हम प्रयास करें अपने जीवन में हर प्रकार के चीजों को संग्रह करने के भी, हमारे जीवन में हर प्रकार का आनंद हो उसके लिए चीजों का होना जरूरी है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, आध्यात्मिक पहलू, उसकी ओर हम कितना ध्यान देते हैं। भौतिकता और आध्यात्मिकता दो पहिए जीवन रूपी गाड़ी के, और जब तक ये दोनों पहिए बैलेंस्ड नहीं है, तब तक आप एक ब्लिसफुल लाइफ, तब तक एक खुशनुमा जीवन का अनुभव नहीं कर सकते। हम अपने जीवन में सुबह से लेकर के रात तक भागम भाग में तो लगे हुए हैं, सांसारिक प्राप्तियों के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य के पीछे भी लगे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या हम अध्यात्म के लिए भी वक्त निकालते हैं? और अध्यात्म का सीधा सा भाव है अपनी आत्म उन्नति, अपने साथ वक्त बिताना, अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाना, जिसको विवेकानंद जी कहा करते थे कि यदि आप रोज थोड़े समय के लिए भी अपने साथ वक्त नहीं बिताते तो आप संसार के सबसे बड़े महापुरुष से मिलने का अवसर खो देते हो। क्योंकि यह भी कहा गया है कि जब मैं भीतर जाता हूं तभी मैं तरता हूं, तभी मैं अपने आप को तराश पाता हूं, तभी निखार पाता हूं, और यह अवसर प्रदान करता है अध्यात्म। कहते हैं पहले का जमाना जो था वो आईक्यू का था, आईक्यू के आधार पे आप अच्छी से अच्छी जॉब, अच्छी से अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं दुनियावी। लेकिन उसके बाद ईक्यू का जमाना आया, इमोशनल क्वेश्चन, जिसके आधार पे व्यक्ति को प्रमोट होना बहुत आसान हो जाता था, ये कहा जाता था। लेकिन आज का दौर है एसक्यू का, स्पिरिचुअल क्वोशंट। यदि हमारे अंदर डेवलप्ड है तो आप खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। जीवन में सब कुछ है, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, क्योंकि जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहिया है आध्यात्म, उसकी ओर ध्यान नहीं है। और आध्यात्म का बहुत सिंपल सा अर्थ है, सिंपल सा अर्थ, शुक्राना, मुस्कुराना, किसी का दिल ना दुखाना। जब व्यक्ति अपने अंदर जाता है, अपने आप को देखता है, तो ये तीनों चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं, तीनों चीजें। आत्मदीपो भव, हमारे सारे वेद शास्त्रों का सार यही है। जब गौतम बुद्ध जी देह का त्याग कर रहे थे तो उनके पट शिष्य ने कहा कि भंते, आप तो देह का त्याग कर रहे हैं, अब आपके बाद संसार को कौन सुकून देगा, कौन सुख देगा, कौन खुशी देगा, कौन प्रकाश देगा? एक ही शब्द बोला बुद्ध जी ने, कहा आनंद आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। यदि तुमने आध्यात्म के आधार पर खुद को प्रकाशित कर लिया तो तुम्हारा प्रकाश औरों को प्रकाश देगा, समाज को प्रकाश देगा, तुम्हारी खुशी औरों को खुशी देगी। और यह अध्यात्म ये खुशी देने का कार्य करती है। अंदर से जो प्रसन्न है, अंदर से जो आनंदित है, वही प्रसन्नता आनंद बाहर उनके जीवन से झलकती है। यहां आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं आप सुबह से रात तक के इस हॉल में हमारे सेवा साथी जो हैं उन्हें देख रहे होंगे, हमारे वीडियो पे, साउंड पे जो हमारे भाई हैं उन्हें आप देख रहे होंगे, स्टेज पर हमारी बहनें आती हैं, भाई आते हैं जो आप इंट्रोड्यूस कराते हैं सभी को, आपका ख्याल रखते हैं, उन्हें आप देख रहे होंगे, या चलते फिरते जो किचन में कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट पे हैं, उन्हें आप देख रहे हैं। सबके चेहरे कैसे हैं, सबके चेहरे कैसे हैं, कैसे हैं, आनंद झलकता है या नहीं झलकता? सभी के अंदर से प्रसन्नता फूट फूट करके बाहर आ रही है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता? सभी कार्य कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी सेवाएं, अपने अपने कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ही चीज है, आध्यात्मिक जागृति के साथ कर रहे हैं। यहां भी हर प्रकार के भौतिक साधन आपको दिख रहे हैं। हम भौतिकता और साइंस को साथ लेके चलते हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो अंदर की ज्योति है वो बुझने ना पाए। आत्म दीपो भव, अपने अंदर को प्रकाशित जो रखता है हमेशा ही वो प्रसन्न रहता है। इसीलिए अंदर की प्रसन्नता के आधार पर बस शुक्राना, दिल से शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया जिसने मुझे इतना सुंदर जीवन दिया, दिल से शुक्रिया प्रकृति का जो मुझे पांचों तत्वों के आधार पे जीवन प्रदान कर रही है, दिल से शुक्रिया मेरे सभी भाई बहनों का जो मुझे मदद करते हैं, मेरे परिवार का, मेरे साथियों का, जो भी मुझे कुछ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। शुक्रिया का भाव जीवन में अध्यात्म लेकर आता है और वहीं से खुशी का झरना प्रवाहित होता है। होता यह है कि हम कंपेयर करते रहते हैं कि किसको क्या मिला और किसको क्या नहीं मिला। एक भिखारी बड़ा प्रसन्न था, रेलवे स्टेशन पे भिक्षा मांग रहा था लेकिन बड़ा प्रसन्न था, एक हाथ भी नहीं था, एक पैर भी नहीं था। जब उससे पूछा गया कि तुम इतने खुश कैसे हो, भिक्षा भी मांग रहे हो, एक हाथ भी नहीं है, एक पैर भी नहीं है, कैसे कैसे इतने खुश हो, तो उसने बहुत पते की बात कही, जिसके लिए मैं हमेशा आपको कह रहा हूं कि इन बातों को जरूर आप बहुत गहराई से विचार कीजिएगा। जो जीवन के सत्य हैं, जीवन के मर्म हैं, हमारी प्रसन्नता के साथ जुड़े हुए हैं, उसने बहुत प्रेरक सी बात कही, मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूं भगवान ने मुझे क्या दिया है। इसीलिए दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि एक हाथ एक पैर भले नहीं है लेकिन मुझे एक बड़ा अच्छा सा परिवार दिया है, बड़े प्यारे से बच्चे दिए हैं जो पढ़ रहे हैं, अपना भविष्य सुंदर बना रहे हैं, दो वक्त की रोटी भगवान मुझे दे देता है, मैं ये नहीं देखता कि उसने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता उसने मुझे क्या दिया है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं मिला है, मेरे पड़ोसी के पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पड़ोसी ने अच्छा घर बना लिया है, मेरे पड़ोसी का बच्चा विदेश चला गया है, डॉक्टर बन गया है, क्या है वो ना देखकर क्या नहीं है उसकी ओर देखते हैं तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। वो देखो ना जो औरों के पास नहीं है। वो कहते हैं ना एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मैंने अच्छे जूतों की मांग करना, कंप्लेन करना तब बंद कर दी जब मैंने ये देखा मेरे पास फिर भी जूता है लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो बिना चप्पल के घूम रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे घर की के लिए कंप्लेन करना बंद कर दिया जब ये देखा कि हजारों लाखों ऐसे हैं जो बिना छत के चल रहे हैं। तो जब हम ऐसे अपने आप को देखते हैं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, जीवन खुशनुमा हो जाता है। इसलिए मुस्कुराते रहें, जो मिला है उसके लिए मुस्कुराते रहें और किसी का दिल कभी भी ना दुखाए, मेरे कारण किसी का दिल ना दुखे। यदि दिल दुखेगा तो कर्म फिलोसोफी ये है, जो देंगे वही मिलेगा, खुशी देंगे खुशी मिलेगी, गम देंगे गम मिलेगा। इसीलिए अध्यात्म ये बात भी हमें सिखाती है कि कोऑपरेट करो, दो, जितना देंगे उतना मिलेगा, सी है कोऑपरेशन, दीजिए दीजिए, जो देंगे वो मिलेगा। जब मुझे ये पता है कि खुशी देने से खुशी मिलेगी तो क्यों ना मैं खुशी देना प्रारंभ कर दूं। हम व्यापारी ना बने कि ये मुझे खुशी देगा तो मैं खुशी दूंगा, ये अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, इससे हम फॉरएवर खुश नहीं रह सकते, फॉरएवर खुश नहीं रह सकते। यदि आपको परमानेंट खुशी चाहिए देना शुरू कर दें। इस सृष्टि का एक नियम है, जो देंगे 100 गुना होकर के आपको मिलेगा। वैली की तरह है ये संसार। एक बच्चा एक वैली में गया, आवाज किया तो प्रतिध्वनि आई, इसे लगा कोई है, उसने कहा कौन है, सामने से और आवाज आई, तेज आवाज, कौन है? ये कहता मैं पूछ रहा हूं तू कौन है, उधर से फिर आवाज आ रही है, मैं पूछ रहा हूं तू कौन है। अब इसे गुस्सा, मैं तेरी जान ले लूंगा, तो उधर से और 10 गुना हो गया, वो आवाज आ रही है, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हम जो दे रहे हैं वो वापस आ रहा है मल्टीप्लाई हो करके। तो बहुत गहन विचार करें इस बात पर जब मैं खुशी चाहता हूं, जब मैं आनंद चाहता हूं, जब मैं सफलता चाहता हूं, जब मैं उन्नति चाहता हूं, क्यों ना मैं वही चीज दूं। कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं दूं। भगवान का बच्चा हूं, ईश्वर की संतान हूं, भगवान मुझे देते हैं। यदि प्रकृति ये कहने लगे तू कुछ देगा तो मैं दूंगा, हवा ये कहने लगे कि यदि तू मुझे ना 1,000 रुपए देगा पर मिनट का, तब मैं तुझे हवा दूंगा। अब यदि प्रकृति ये कंडीशन रख दे हमारे साथ, बताएं हमारा क्या होगा? सीखें, देना सीखें। देंगे तो मिलेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक एक पेयर बना लें और यहीं से देना शुरू करें, है ना? हाँ, पेयर बना लें एक एक। अब हम एक दूसरे को खुशी देंगे, अपने बोल के माध्यम से खुशी देंगे, अपने किसी भी एक्शन के माध्यम से। कैसे देंगे वो आप निर्धारित करो। आपको अपने पार्टनर को खुश करना है, खुशी देनी है, कैसे देना है आप निर्धारित करो। चलो यहां से शुरू करेंगे। चलिए पेयर बन जाएं और शुरू करें। खुशी देने में देर नहीं करनी है। हाँ जी, सभी पेयर बना लीजिए और पेयर बना के खुशी दीजिए एक दूसरे को। क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा बोलूं? अच्छा, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकते हैं। आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, बहुत सफल हो, आपके लिए मेरे बहुत दिल की शुभकामनाएं है। शुभकामनाएं दीजिए एक दूसरे को। शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, मेरे दिल की बहुत सारी दुआएं हैं। हाथ मिलाएं एक दूसरे से, शेक हैंड करें। हाथ मिलाएं एक दूसरे से, दिल से एक दूसरे को विश करें प्यार से। यदि बहनें एक दूसरे के पेयर हैं तो बहनें, भाई एक दूसरे के पेयर हैं तो प्यार से गले मिलें, एक दूसरे को शुभकामनाएं दें, गुड विशेस दें। वेरी गुड। अब एक बार जोरदार ताली एक दूसरे के लिए बजा लें और अपने लिए बजा लें। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा लें। बहुत सुंदर। थैंक यू। बैठेंगे सभी। अब देखें एक दूसरे के चेहरे को, कैसा लग रहा है? एक मिनट का वक्त लगा। अब देखो अपने चेहरे को तो नहीं देख पाएंगे, मिरर नहीं है, दूसरे के चेहरे को देखें कैसा है। अब तक थोड़ा सा हो सकता है उसे भूख लग रही थी, तो अभी कब पूरा होगा ऐसा तो नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी कई बार हम किसी बात के चिंतन के कारण भी थोड़े से दुखी रहते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमें अपनी शुभकामनाएं देता है, हम एक खुशी देते। हाँ जी, खुशी टेम्परेरी नहीं, परमानेंट होनी चाहिए, उसी पे हम आगे आ रहे हैं। टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, राइट? तो अभी देखो थोड़ी देर हमने दिया, और ये देना यदि आप सारे दिन करते हो, जो भी मिलता है यदि आप देते हैं, खुशी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, प्यार भरे दो शब्द बोलते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य जरूर आपको सफलता दिलाएगा, अप्रिशिएट करने की आदत डालें। जब एक दूसरे को गुड विशेस देते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, सामने देखें सामने वाला कितना खुश होता है। और इसमें कुछ जाता नहीं, ये कोऑपरेशन आपको जरूर देना है एक दूसरे को। होता ये, हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वो कहते हैं, एक टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को कहा कि चलो अपने अपने नाम की पर्ची बनाओ, और एक बड़ा सा बॉक्स लिया, सभी के नामों की पर्ची उसमें डाल दें, और कहा जैसे ही मैं 1, 2, 3 कहूंगा वैसे ही तुम सभी को अपना हाथ इसमें डालना है, अपनी अपनी पर्ची निकालनी। अब 1, 2, 3 कहा, सबने हाथ डाला, निकाला, सब फटे टूटे, किसी के हाथ में किसी के नाम की पर्ची नहीं आई, बल्कि सारा पर्ची उन्होंने फाड़ डाला। टीचर ने कहा दोबारा ये करते हैं, चलो फिर से अपना नाम लिखो। बॉक्स बनाया गया, डाले गए सभी की पर्चियां, और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, इंस्ट्रक्शन यहां चेंज कर दिया गया। अच्छा, ऐसा करना, बहुत ही 1, 2, 3 कहते ही पीसफुली अपना हाथ अंडर डालना बॉक्स के, जिसके हाथ में जिसके नाम का स्लिप आएगा बहुत प्यार से उसे वो स्लिप दे देना। अब कितना वक्त लगा होगा? एक मिनट के अंदर सभी के हाथों में उनके नाम की स्लिप आई थी, बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के कारण ऐसा हुआ। हम भी एक दूसरे को देने की भावना यदि रखेंगे, हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशी बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि प्रसन्नता के लिए कहा जाता है जितना देंगे मिलेगा, और साथ ही ये चंदन की तरह है। और म्यूजिक के लिए भी देख लें, यदि आप यहां भी तो हारमनी की जरूरत होती है, हारमनी हॉल में आप बैठे हुए हैं, राइट? हारमनी हॉल में बैठे हुए हैं तो यहां से सुंदर हारमनी की बात लेकर के जाएंगे, एक दूसरे को सुंदर सहयोग देने की बात लेकर के जाएंगे। और लास्टली मैं आ रहा हूं, दार जी कह रहे थे कि परमानेंट कैसे होगी हमारी खुशी, लेकिन एक कई बातें आती हैं जो हैप्पीनेस के लिए मिथ और ट्रुथ की बात है। इस बात को मैं थोड़ा सा जल्दी में ले रहा हूं। कई बार हम ये सोचते हैं कि लोग मेरे साथ अच्छा करें तो मैं खुश हूं, ये मिथ है। लेकिन जब मैं औरों के साथ अच्छा करता हूं तब मुझे खुशी प्राप्त होती है। कामना हम ये रखते हैं कि लोग मुझे समझें तो मैं खुश होऊंगा, लेकिन सत्य ये है कि जब मैं लोगों को समझना शुरू करता हूं तब मैं खुश रहता हूं। मैं ये सोचता हूं कि लोग मुझे सम्मान दें, प्यार दें, तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सत्य ये है कि जब मैं औरों को सम्मान और प्यार देना शुरू करता हूं तब मैं खुश रहता हूं। इसलिए स्मिथ और ट्रुथ को जरूर थोड़ा सा सेपरेट कीजिएगा और समझिएगा, जब हम देना शुरू करते हैं, जिस देने की बात हम करके आए हैं, तब ऑटोमेटिक आपको ये चीजें प्राप्त होती हैं, और जब तक आप कामना रखेंगे ना तब तक वो चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए हम लास्टली आते हैं डी पे, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट किससे? एक्सपेक्टेशन से। लोग मेरी महिमा करें, प्रशंसा करें, तब मैं खुश होऊंगा, यदि ये अपेक्षा है कभी भी परमानेंट रूप से खुश नहीं रहेंगे। यदि चीजों पर आपकी खुशी आधारित है, अच्छा मोबाइल मिल गया, अच्छी कार मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, परमानेंट खुशी नहीं रहेगी। यदि आप कंपेयर करते रहेंगे लोगों के साथ तो आपकी खुशी कभी भी परमानेंट नहीं रहेगी। आप डिटैच होना सीखें, डिटैच अपनी बॉडी से और अटैच होना ईश्वर से, जो आपको सिखाया भी गया होगा। और साथ ही गीता का सुंदर श्लोक भी है, महावाक्य है भगवान का, कि तुम्हें कर्म से डिटैच नहीं होना है लेकिन कर्म के फल से डिटैच होना है। कई बार हम फल से अटैच रहते हैं कि मैं जो कर रहा हूं यही मुझे मिलना चाहिए, लेकिन यदि फल से आप डिटैच नहीं होंगे आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। बहुत ही डीप और चिंतन की बातें हैं, जरूर इस पर आप चिंतन कीजिएगा। तो सिंपल सी बात, डिटैचमेंट अपने शरीर से, अटैचमेंट परमात्मा से, उसे मैंने अपना साथी बना लिया। कहते हैं ना, भगवान का हाथ पकड़ लो तो किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए भगवान का हाथ पकड़ लें, जो बात आपको यहां पे सिखाई जा रही है, तो चलें उसका हाथ, इस एबीसीडी को अपने जीवन में लाने के साथ साथ पकड़ने का संकल्प कर लें कि बस ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर साथ है तो भले ही मेरे अंदर कुछ कमी कमजोरी है भी, लेकिन मेरी सफलता हमेशा निश्चित है। ईश्वर साथ है तो मेरी खुशी सदा निश्चित है। तो आप सभी जीवन के हर मोड़ पे, कहते हैं ना जीवन है तो उतार चढ़ाव भी है, लेकिन हार हो या जीत मुझे हमेशा खुश रहना है, इस सुंदर संकल्प के साथ इस परिसर से जाइएगा। ये सुंदर संकल्प आपके जीवन को सफलता और खुशी से भरेगा, और यही हमारी मंगल कामना है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।